फिर अगली बात कहे कि बीमारी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो आप कहेंगे क्या बीमारी अच्छी होती है? जी बीमारी अच्छी होती है, वो बीमारी अच्छी होती है जो बीमारी बंदे को अल्लाह के करीब कर दे, वो तकलीफ जो बंदे को अल्लाह का कुर्ब दे दे वो बड़ा खूबसूरत होती, क्योंकि बीमारियां और तकलीफें मुसलमानों को गुनाहों से पाक करने और दरजात को बुलंद करने का बायस बनती हैं। हदीस सुनिए, बड़ी खूबसूरत है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैं नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, इस वक्त आप शदीद बुखार में मुबतला थे। या ये भी नोट करें, अल्लाह के नबी भी बीमार होते थे। मैंने अर्ज़ किया आपको शदीद बुखार है, यही वजह है कि आपको दोहरा अजर मिलता है। आपने इरशाद फरमाया, हाँ जब किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह इसकी वजह से इसके गुनाह इस तरह झाड़ देते हैं जैसे खिजा यानी ऑटम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। ये बुखारी की रिवायत है। आप सबने फॉल सीजन तो देखा है ना, इधर आप अपना बैकयार्ड साफ करते हैं, चंद घंटे बाद फिर पत्ते गिरते हैं। इस तरह जिस्म पे जो गुनाह होते हैं ना, बीमारी में झड़ते हैं। दिल चाहता है कि हमारे गुनाह यहीं झड़ जाए, सच्ची बात है ना। यहाँ तक रिवायत आती है कि मोमिन को अल्लाह मौत से पहले इस तरह पाक कर लेता है कि उसके जिस्म पर एक भी गुनाह नहीं रहता। देखिए दुनिया में हम पे जो तकलीफें आ रही हैं ना, इसको भुगतने और हमारी मदद करने के लिए भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं। इंसान है, मोहब्बत करते हैं, नौकर भी हम रख लेते हैं। आप सोचिए कि अगर हम में से कोई अपने किसी गुनाह के साथ कब्र में पहुंच गया, तो अल्लाह ने माफ़ तो करना है वहां जाके, तो कब्र में जब उस माफी का जरिया कुछ अजाब बनेंगे तो उस वक्त हमारा हाल कौन पूछेगा। कभी भी कोई तकलीफ आए फिक्र ना करें। हत्ता के सहाबा कराम के बारे में तो आता है कि वो जब कभी ज्यादा दिन तक कोई बीमारी ना आती, परेशानी ना आती, तो परेशान हो जाते, कहते तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा हुआ है, यानी ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। किसी की टेक केयर करना क्या है कि अल्लाह उसके गुनाहों को या तो माफ़ कर दे या इस तरह के छोटे छोटे कफारे बना दे। आप कहते होंगे कि चल अल्लाह मुझे तो ऐसे ही माफ़ कर दे, बीमार भी ना करे। देखिए अल्लाह ताला के कुछ असूल हैं, कुछ जाबते हैं ना, वो भी पूरे करने होते हैं। अल्लाह ताला बहुत अदल वाले हैं। इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से बुखारी में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स से अल्लाह ताला भलाई करना चाहता है इसे मुसीबत में मुबतला कर देता है। आप कहेंगे वो ये क्या कह दिया आपने, गलत तो नहीं सुना मैंने? हम क्या सोचते हैं जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसको दुनिया की नेमतें देते हैं? आज जब देखिए किसी को दुनिया में कोई भी चीज़ देखें, दिल्ली भी मिली, तो क्या कहते हैं, इस पे अल्लाह का बड़ा फजल है, ये कहते हैं ना। हालांकि अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं और अभी रिसेंटली सूरत अल अनाम में ये कितना डिटेल से पढ़ा, सूरत अल अराफ में भी, कि अल्लाह ताला बंदों को खैर दे के भी आजमाता है और शर दे के भी आजमाता है। खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। सूरत तबारक की दूसरी आयत में हम रोज रात को पढ़ के सोते होंगे कि अल्लाह वो जात है जिसने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि देखे कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। सूरह कहफ के बिल्कुल शुरू की आयतों में हम पढ़ते हैं कि जिंदगी और मौत इसलिए कि अल्लाह देखे कि तुम क्या करते हो। तो देखिए इसको समझने की जरूरत है। बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम पे जो नेमतें आती हैं बस ये अल्लाह का इनाम है हम पे, नहीं, बाज़ नेमतें अल्लाह का गजब होता है, पकड़ होती है। कैसे, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, थोड़ी सी तबीयत पे नागवार गुजर सकती है। आपने कभी पाकिस्तान में देखा होगा कि घर में चूहा आ जाता है ना, तो लोग वो चूहा पकड़ने के लिए एक पिंजरा सा लगाते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, चूहे का फेवरेट फूड डालते हैं, घी लगा के रोटी जिसकी खुशबू आए, अमरूद लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको पसंद है। अब आप सोचिए किसी जगह अमरूद का टुकड़ा किसी ऐसे ही फंदे पे लगा हुआ है, चूहा आएगा वो क्या समझेगा, ओ वाह आज तो ट्रीट हो गई, लेकिन जू ही उसको खाने के लिए जाएगा उसकी गर्दन नच जाएगी। बाज़ दफ़ा अल्लाह हमें इसी तरह हमारी फेवरेट चीज़ें देता है, ये भी लो ये भी लो ये भी लो, और हम कहते हैं वाह सो ब्लेस्ड, बहुत कुछ है, बल्कि ब्लेस्ड भी नहीं कहते, लकी कहते हैं, वी आर सो लकी। छोटी सी बात कह दूँ, कोई फतवा नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन है ये बात हमारे आम लोगों के बोलने में, बहुत लकी हूँ, गुड लक, इट्स नॉट फेयर। इस्लामिकली हम किसी को लकी नहीं कह सकते, बिकॉज इसके पीछे जो मिथ है ना लफ्ज़ लक के, उसमें शिर्क है। हम क्या कह सकते हैं एक दूसरे को, आई एम सो ब्लेस्ड। बाज दफ़ा लोग कहते हैं बैड लक, ओ बैड लक, बैड लक इज़ नथिंग। हम क्या कहते हैं, तकदीर, قدر اللہ ما شاء فعل. تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں, آپ اپنے بھی اور بچوں کے بھی نوٹ کریں اور ان کو نکال دیں, بس چینج کر لیں. لگ کو بلیس میں کر دیجئے, بیڈ لگ کو آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے آزمایا گیا ہوں, یا میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے, اٹس اے فتنہ, از اے ٹرائل, نہ کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیمار بندے کو جو بینیفٹس ملتے ہیں اس میں ایک بینیفٹ کیا ہے کہ بیماری کے دوران بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جلدی سے نوٹ کر لیں, ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی قبول ہو. پہلا شخص کون ہے؟ مظلوم, یہاں تک کہ بدلہ لے لے. یہاں تھوڑا سا اس پہ بات کروں, ہم عموماً دکھی ہو جاتے ہیں جب لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں, فلاں نے میرے سے زیادتی کی, بھائی نے زیادتی کر دی, بہن نے بات کر دی. دیکھیے ظلم یہ نہیں ہوتا کوئی کسی کو ہاتھوں سے اور ڈنڈوں سے پیٹے, ظلم یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا اور اگلے نے آپ کو برا مائنڈ کر کے, آپ نے بڑی خوشی میں دعوت کی, سب کو بلایا اور کوئی ایک گھر میں بیٹھ گیا ناراض ہو کے, جی میں تو نہیں آتا یا میں تو نہیں آتی, تم نے مجھے پوچھا نہیں, بلا لیا اور پوچھا نہیں. مثال ہے, اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو یہ بیٹر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے بجائے اس کے کہ کوئی آپ سے کرے. زندگی میں آپ دیکھیے کہ ایک اصول سیکھ لیں, کوئی آپ پہ زیادتی کرے اٹس بیٹر دین آپ کسی پہ زیادتی کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, سہینگ ان کی, کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں, آئی لائک دس, کہ دا ڈے آف ججمنٹ, جب میں قیامت کے دن جاؤں تو میں مظلوم ہوں رادر دین کہ آئی ایم اے ظالم. تو ظالم نہیں بننا, کسی کے اوپر زیادتی کرنا, بات کرنا, مظلوم بنی اور مظلوم کی دعا تو ویسے بڑی قبول ہوتی ہے. دوسرا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے, حاجی, حج کر کے آنے والا, یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے, یعنی حج کرنے سے لے کے گھر آنے تک کا جو ڈیوریشن آف پیریڈ ہے اس میں جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تیسرا مجاہد, مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو مجاہد نہیں ہیں, تو بن سکتے ہیں آپ. دیکھیے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, اور جہاد کہتے ہیں محنت کو, اور محنت کون سی چیز ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا صرف تلوار پکڑ کے محنت ہوتی ہے؟ آپ اس وقت یہ نوٹس لینے کی کوشش میں نا تو قلم پکڑ رہے ہیں نا, کبھی آگے نکل جاتا ہے, کبھی پیچھے نکل جاتا ہے, کبھی نوٹ نہیں کر پاتے, یہ بھی جہاد ہے, یعنی علم کا جہاد بھی ہے. آپ اللہ کے دین کا غم لگا لیں اپنی ذات کو, آپ سوئے ہوئے بھی مجاہد ہیں انشاءاللہ. فکر لگا لے کہ اللہ میں نے تیرا دین عام کرنا ہے, میں نے لوگوں کو آگ سے بچانا ہے, خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کو بچانا ہے, تو ایسے بندے کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ کو اگر میں واقعات سنانے لگ جاؤں کہ اللہ نے کیسے صحابہ کی دعائیں قبول کی, سبحان اللہ, گھر سے کہہ کے جاتے تھے کہ میں نے اس طرح کی موت لینی ہے, اور ایسی موت آ گئی. سعد بن معاذ یاد آ گئے مجھے کہ غزوہ خندق میں ان کی یہ جو کلائی نا یہاں سے ان کی رگ کٹ گئی تھی اور خون نکلا, اور آپ کو پتا کہ اس دور میں اس طرح کی علاج نہیں تھے, تو اتنا خون نکلا کہ جان نکلنے کا اندیشہ تھا, تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ابھی مجھے نہیں مرنا. اس جنگ میں یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے خیانت کی تھی, غداری کی تھی, تو کہنے لگے جب تک میں یہود کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا. اللہ کا حکم دیکھیے کہ وہ خون خود بخود بند ہو گیا, پھر وہ جنگ پوری ہوئی. اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ڈے حکم دیا بنو قریظہ کی طرف جانے کا. جب وہاں گئے, لمبی کہانی ہے, لیکن اوور آل ہوا کیا کہ وہ لوگ سرنڈر ہو گئے. جب ان کو پکڑا گیا تو اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو جو یہود تھے نا ان کا سعد بن معاذ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, مطلب دوستی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمیں تھوڑی سائٹ دیں گے, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ جو بھی ہمارے بارے میں سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. آپ نے ان کو بلایا, یہ اس طرح سے ان کو پکڑ کے لوگ لائے, تو ان سے پوچھا. انہوں نے بہرحال جو ڈیسیژن دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد جو فیصلہ تم نے کیا ہے نا, ساتویں آسمان پہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا, یعنی ویریفائی کر دیا. خیر جب وہ جنگ پوری ہوئی, سب یہ معاملہ رفع دفع ہوا, اینڈز اپ ہوا, تو دیکھا ایک دم خون کی دھاریاں چل رہی ہیں مسجد نبوی سے باہر کی طرف. دیکھا تو وہی زخم جو پچھلی جنگ میں لگا تھا وہ پھوٹا, اور پھر اس کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی. سبحان اللہ. तो अल्लाह बहुत कदर करता है। साहबा घर से कह के जाते तो ऐसे लगता था जो ये कह के आए हैं मनोहन अल्लाह ने वैसे ही किया। तो मुजाहिदीन की दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, इसलिए कभी किसी ऐसे बंदे की आह नहीं लेनी चाहिए जो अल्लाह के रास्ते में निकला हो। बस दफा हम उस पर इल्जाम लगा देते हैं, बातें कर देते हैं। देखिए बंदे के दिल से भी निकल जाती है ना तो पड़ती है बहुत सख्त किस्म की। फिर इसी तरह आप देखिए कि चौथा वो शख्स है मरीज, जब तक कि वो ठीक हो जाए। अब आप बताएं क्या हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हो, तो मरीज बनने में क्या रह जाए। एक तो मरीज होना होता है, एक होता है मरीज बनना। जब भी बीमार हो मैक्सिमम टाइम दुआओं में गुजारा करें, अपनी तकलीफों को याद करें, दूसरों के लिए करें, अपने लिए करें। फिर इसी तरह पांचवा वो शख्स है जो भाई के लिए गायबाना दुआ करता है। मिसाल है कि जैसे यहाँ आज हमें फरजाना नहीं दिख रही तो हम सब कहते हैं आए फरजाना के लिए दुआ करते हैं, या जैसे हमारी एक बहन है उनके हस्बैंड की तबीयत थोड़ी खराब है, हम कहते हैं अल्लाह ताला उनके हस्बैंड को सेहत दे दे। तो अब वो नहीं है ना इधर, तो गायब के लिए जो दुआ करते हैं ना उसकी दुआ कबूल होती है। तो हम सब इस वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बहनों भाइयों में जितने बीमार हैं उनको सेहत और आफियत अता फरमा। फिर इसके बाद आपने फरमाया इन तमाम दुआओं में से जल्दी कबूल होने वाली दुआ भाई के लिए भाई की गायबाना दुआ है, ये बहकी की रिवायत है। तो बहरहाल आप देखिए कि इन चीज़ों से मुझे और आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि बीमारी बुरी नहीं होती। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो देखिए नंबर एक, इलाज कराना सुन्नत है, लेकिन इलाज के लिए गलत यानी हराम चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिवायत है हजरत उसामा बिन शरीक से, कहते हैं कि बाज़ बदुओं ने अर्ज़ किया यानी देहाती थे कि अल्लाह के रसूल क्या हम इलाज करवाएं, आपने फरमाया हाँ अल्लाह के बंदो इलाज कराओ। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसकी शिफा ना दी हो, यानी शिफा ना हो या फरमाया कि दवा ना हो सिवाय एक बीमारी के। लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी वो क्या है, यानी एक बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है बाकी सबकी है। कहा अल्लाह के नबी वो क्या है, कहा बुढ़ापा। जितनी मर्जी खुराक खा लो, दवाएं खा लो, आप जो कर लो वो आके रहेगा, ठीक है। फिर अगली चीज़ इसमें चंद रिवायतें इकट्ठी नोट करें, फिर इसमें हम बात करेंगे। अगली रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, अहमद, अबू दाऊद और तिरमिज़ी और इब्ने माजा, चार किताबों में ये रिवायत है। अल्लाह के नबी ने इलाज के लिए हराम चीज़ें इस्तेमाल करने से मना फरमाया है, हराम नहीं करना इस्तेमाल, क्योंकि हराम में कभी शिफा नहीं होती, ठीक है। कोई चीज़, अब आपके दिनों में क्वेश्चंस होंगे शराब, अल्कोहल, और इसी तरह बाज़ दफ़ा मरीज़ों को सुलाने के लिए अगर कोई इस तरह के ट्रैंक्लाइजर्स हैं, तो छोटी सी बात है हदीस के अल्फाज ही अरबी के बता देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम कहते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिद दवाइल खबीस, गंदी और नापाक चीज़ में कभी शिफा नहीं हो सकती। अगली रिवायत से और भी थोड़ी क्लियर होगी बात। अब्दुर्रहमान बिन उस्मान से रिवायत है कि एक तबीब यानी डॉक्टर यानी हकीम उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेंढक को दवा में इस्तेमाल करने का मसला पूछा, यानी फ्रॉग क्या उसको इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अल्लाह के नबी ने इसे मारने और दवा में डालने से मना कर दिया, ठीक है। फ्रॉग इसे पता चलता है ना जैसे कुछ नापाक जानवर है, गंदे छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, बस इनके जिस्म में ऐसे इंजाइम्स हो सकते हैं कि जो लोग बीमारियों में दवाओं में यूज़ करते हो, तो वो नहीं करने चाहिए। फिर अगली रिवायत तारिक बिन सुवैद जाफी से है कि नबी सल्लम से शराब के बारे में सवाल किया गया तो आपने उसके इस्तेमाल से मना फरमाया, इसका बनाना नापसंदीदा फरमाया। हजरत तारक ने अर्ज किया मैं दवा तैयार करने के लिए शराब बनाता हूँ, यानी जस्ट फॉर द मेडिकल पर्पस। तो आपने फरमाया शराब दवा नहीं बल्कि बीमारी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सोचेंगे कि फिर आजकल तो दवाएं हम पीते हैं तो आराम आ जाता है और होती हैं। सिंपल सा एक बुनियादी असूल समझ लीजिए, एक होती है आइडियल सिचुएशन, ठीक है, आइडियल सिचुएशन। एक आइडियल मोमिन होता है बिल्कुल अनटच्ड, प्योर, फितरत पे, फितरत सलीमा, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 वक्त नमाजी। उसको अल्लाह इन चीज़ों से कभी शिफा भी नहीं देगा क्योंकि वो तैयब है पाकर, वो कभी लेगा भी नहीं। अब रह गई बात दूसरे, हम जैसे चूं चूं के मुरब्बे, मिक्सअप, मिक्सचर्स, हर कोई अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। तो अब अगर वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनको सेहत हो जाती है तो आप कह लें कि उनके जिस्म के अंदर जो गंदी चीज़ें गई हुई थी ना उसकी वजह से उस गंदगी से आराम मिल गया। मेरा बात समझ आई है? अगर आप प्योर हैं तो आपको कभी भी खबीस चीज से फायदा नहीं होगा, इम्प्योर से फायदा नहीं होगा। आप कहेंगे गोरों की दवाइयां हैं, वो खाते हैं, वो शराब पीते हैं, ठीक होते हैं, इसलिए कि उनके अंदर भी शराब थी और शराब गई तो ठीक हो गए। वो पिक का गोश्त खाते थे, अगर किसी दवा में पिक के कोई इंजाइम से तो उनको फायदा होगा, लेकिन आइडियल हालात में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इससे अपना जहन बस क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन कोई जहन में उभरे तो बस हमारे लिए तो अल्लाह के नबी की बात काफी है। ठीक है, इसी तरह आप कभी कुछ सीरप्स लेते हैं, कफ सीरप्स हैं, कुछ भी ऐसे हैं, तो मेक श्योर कर लीजिए कि उसमें वाइन या कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो कि जिस्म को तकलीफ दे। फिर इसी तरह नबी सल्लम ने बुखार का इलाज ठंडे पानी से करने का हुक्म दिया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बुखार हुआ इसको नहलाना नहीं, मोस्टली माएँ यही करती ना, हम और अपने बच्चों को लपेट के रखते हैं, गर्म कपड़े डालते हैं। अब वेस्टर्न स्टाइल में ये चीज़ मैंने देखी है कि कपड़े उतार दो, खुले कर दो, पानी में डाल दो, और ये तरीका नबी सल्लम से हमें साबित है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की भट्टी में से एक भट्टी है, इसे ठंडे पानी से ख़त्म करो। इब्ने माजा की रिवायत। अब आप देखिए, जिन डॉक्टर्स ने आज के दौर में ये इलाज निकाला है कि मरीज़ को बुखार की हालत में ठंडे पानी में रखो, उनको अगर हम मुसलमान ये बात पहुंचा दें कि हमारे नबी ने भी यही कहा है, तो क्या उनका दिल नहीं खुलेगा इस्लाम के लिए? उम्मीद है ना कि खुल सकता है। तो हमारे लिए क्या इसमें बात है कि बुखार में शावर लिया जा सकता है। अब आप फिर थोड़ी सी बात मैं कहूंगी कि अब आप कहेंगे एक बच्चा है और उसको बिल्कुल दंगा करके और आप -20 और आप ठंडे पानी में डाल दें, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ऑलवेज देखिए कि चीज़ों को, फिर वही बात कहूंगी कि सेहत मंदी के दिनों में आप किस तरह ट्रीट करते थे। आप जिन चीज़ों को बहुत ढांक छांप के और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करते हैं, फिर बीमारी में भी केयर कीजिए, लेकिन जो बच्चे बेचारे लोगों के खुले फिरते हैं देहातों में इधर उधर, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम ठंडे पानी में डालने के बजाय ठंडे पानी की पट्टियाँ हाथों में कर दें, और बिल्कुल ठंडा ना करें, पहले ल्यूक वार्म फिर रेगुलर वार्म करते करते फिर ठंडा करें। ऑलवेज ग्रेजुअलिटी को ज़िंदगी में रखिए। अब एक बच्चा गर्म बिस्तर से पूरा निकला, बिल्कुल उसकी बॉडी गर्म थी, आप जाके ठंडे पानी में रख दें, तो ये तो आम हालात में भी नहीं हम करते। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत अहम होता है कि आप किस तरीके से करते हैं। इसी तरह आप देखिए कि हार्ट पेशेंट्स के लिए, अब जो हम चीज़ें देख रहे हैं ये नबी सल्लम की मसनून चीज़ें हैं कि जो आप बीमारियों में यूज़ करते थे, यानी आप कह लें कि इस वक्त हम तिब्बे नबी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिल के बीमारों के लिए अल्लाह के नबी ने क्या नॉमिनेट किया, क्या इलाज मुंतखब किया, तो दिल के मरीजों के लिए हरीरा तजवीज़ किया। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, तलबीना दिल के मरीजों के लिए राहत बख्श है और गमों को हल्का करता है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब तलबीना और हरीरा होता क्या है, आपके हमारे कल्चर में तो इतना नहीं होता ना, तो जो छाने बगैर, जिसको आप आज ओट मील कह सकते हैं ना, जो होल व्हीट होता है बगैर छाने जौ के आटे का हलवा बनता है, उसको तलबीना कहते हैं, यानी फुली एनर्जेटिक है। अगर आप थोड़ी सी मेरी बात समझें, पाकिस्तान में हम दलिया बनाते हैं ना, आप दलिए की एक किस्म कर लें, क्योंकि उसमें फुल व्हीट भी होता है और वो फिर उसको घी में पकाते थे और जिस तरह से भी है, तो ऐसी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करती हैं दिल को। और आप देखें कि आप कैसे सारे दिल के मरीज़ हैं वो फिर तलबीना और हलवा बना के खाएं, लेकिन ये भी देख लेना कि साथ शुगर ना हो और ब्लड प्रेशर हाई ना हो। असल में एक मौके पे किसी के घर में सदमा था, कोई मौत का मौका था, कोई भी फौत हुआ, तो उस वक्त आपने कहा कि इनको तलबीना बनाकर भेजो, इससे गम हल्का होता है। इसे एक बात तो आप समझ रहे हैं ना कि जो हम खाने खाते हैं उसका जिस्म पे असर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आती है। फिर नमूनिया का क्या इलाज है, अल्लाह ना करे अगर किसी को हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन होता है। अब नमूनिया का इलाज के उदे हिंदी इस्तेमाल करने की हिदायत करते थे। उदे हिंदी के पढ़ के सुनाती हूँ। हज़रत उम्मे कैस बिनते मखसन कहती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपनी औलाद के हलक क्यों दबाती हो, यानी उनका चेस्ट क्यों बंद करती हो, तुम्हें उदे हिंदी इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें 7 बीमारियों के लिए शिफा है और इनमें से एक जातुल जंब है। हलक की बीमारी के लिए इसे नाक में डालना चाहिए, जबकि जातुल जंब के लिए मुंह में चबाना चाहिए। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। जातुल जंब के पसलियों का दर्द, नमोनिया में आपको पता है ना चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो क्या पता चला, ऊद ऊद आप समझते हैं क्या चीज़ है, जैसे जलाने की चीज़ होती है ना, ऊद सक नहीं होता, बेसिकली ये दरख्तों की छाल होती है। ठीक है, ऊद बेसिकली उस लकड़ी को अरब लोग कहते हैं जिसको जलाएं तो खुशबू आती है। ठीक है, और हिंदी जो हिंद में मिलती है, तो बेसिकली इज जस्ट लाइक अ जड़ी बूटी। ऑर्गेनिक किस्म का ट्रीटमेंट है, हर्बल जी, जजाक अल्लाह खैर, यानी एक हर्ब है ये, ठीक है, हर्बल है। तो अगर किसी के मतलब हलक में दर्द है, लाइक मीन जैसे थ्रॉट प्रॉब्लम है, जैसे थ्रॉट उसका स्वे खट्टा हो रहा है या कुछ भी, तो नाक के रास्ते इसको डालें, इसका पाउडर या लिक्विड बना के कुछ भी। लेकिन अगर नमूनिया हो तो इसको मुंह में चबाना चाहिए। अब हम लोग ना भी करें ना, आपको पता है बहुत सारी दवाइयों में ये चीज़ें डलती हैं। आज अगर आप हर्बल चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसमें ये मिलेंगी। इसी तरह आप में से किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत सारे लोग होंगे। आधे सर का दर्द इसको कहते हैं, दर्द शकीका बोलते हैं अरबी में। इसका इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने लगवा कर किया। पचने क्या होते हैं? कपिंग। आज के दौर में तो इसका बड़ा रिवाज है ना, क्या बोलते हैं इसको? और भी एक नाम है, हिजामा करना, ठीक है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में दर्द शकीका की वजह से पचने, पचने कहते हैं कट्स को, सुई उस्तरा या ब्लेड वगैरह से खून निकालना लगवाए। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, हिजामा इसके बारे में। आप देखिए कि हमारे जिस्म में दो तरह की वेन्स होती हैं, एक जिसमें प्योर ब्लड होता है और एक जिसमें गंदा ब्लड होता है। एक दिल की तरफ जाती है सारी बॉडी से ब्लड लेके गंदा, ताकि जिस्म में जो भी गंदगी हुई है उसको दिल में जाके उसको क्लीन करके वापस लाते हैं, ठीक है। और दूसरी दिल के अंदर से निकलती हैं, वो क्लीन होती हैं। तो पचने जो लगाते हैं जो लोग, यानी जो कपिंग करते हैं या जो हिजामा करते हैं, उनको पता होता है कि हमारी कौन सी रेंस डर्टी हैं। उस जगह पे ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। आपने करवाया भी होगा कभी, बल्कि कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो करवाती हैं, करवाया उन्होंने, कोई सिख थी सिस्टर, मुझे याद भी नहीं किससे बात हुई। तो बहरहाल वो कहती हैं कि मैं हर साल में एक दफ़ा लगवाती हूँ और फिर मुझे उससे फ़ायदा होता है। तो वहाँ कट लगा के ना, तो ऊपर एक वो सक्शन पंप सा होता है, उसको लगाते हैं ना, तो गंदा ब्लड निकल आता है। ये उस दौर का रिवाज है। आज के दौर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल इलाज है। जिसमें में हर तरह की तकलीफें होती हैं, हमारी अपनी सिस्टर्स में एक सिस्टर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बैक का और जॉइंट्स का प्रॉब्लम था। तो मेरी जब लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आजकल करवा रही हूँ कपिंग और उसे बहुत फ़ायदा हुआ। वक्ती तौर पे थोड़े जिस्म तकलीफ होती है, ज़ाहिर है कि उसका एक असर तो होगा ना, जिस्म से खून भी निकलता है और कट्स लगते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर तबीयत हल्की हो जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह जॉइंट्स का पेन किसको है? जोड़ों का दर्द, घुटनों का तो हमारे कल्चर में बड़ा फेमस है ना, इरकुन निसा कहते हैं इसको अरबी में। इसका इलाज नबी सल्लम ने क्या बताया? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि इरकुन निसा का इलाज जंगली बकरी के सीरी, यानी उसके जो हिप्स होते हैं ना, उसमें है। इसे अच्छी तरह गलाया जाए, फिर इसके 3 हिस्से किए जाएं और हर रोज़ निहार मुँह एक हिस्सा पिया जाए। कहाँ क्या चीज़ है आपको समझ आई है? जंगली बकरी, यानी जो बकरे होते हैं ना, एक पहाड़ी बकरे होते हैं, एक जंगलों में, यानी मुराजे के सेल्फ रेस जो बकरियां होती हैं जी, गोट्स जो होती हैं, उसका जो रान होती है ना, जिसको हम रान बोलते हैं, थाइस की वाली जगह, इधर का गोश्त लीजिए, ठीक है, और उसको फिर यखनी बनाए और उसको फिर रोज खाली पेट पीजिए, ठीक है। आप करेंगे इसको? बहुत आसान है ना, बस आप बकरी के गोश्त को लें और उसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर कोई नमक मिर्च डालते हैं कुछ भी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जोड़ों का दर्द है। और आप फील करते हैं कि उसमें से जो वो मिख निकलेगी या जो उसका मीट के अंदर से असर है, फिर वो आपके मीट को स्ट्रांग करेगा। अमूमन आप देखिए जो बीमारियों का इलाज है ना, वो मिलता जुलता है। जैसे वॉलनट है, अखरोट है ना, उसकी शक्ल अगर आप देखें तो वो ह्यूमन ब्रेन से मिलती है, और आपको पता है कि वॉलनट ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर भी हैं। इसके ऊपर एक ईमेल भी था मैसेज में, बहुत खूबसूरत, कि अल्लाह की जो फार्मेसी है, तो उसमें आप देखें कि जैसे सैलरी है, खाते होंगे आप सैलरी में, बड़ी मज़े की होती है, तो उसकी अगर आप शेप देखें तो बोन से मिलती है। तो कहते हैं कि सैलरी आपकी बोन्स को स्ट्रांग करती है। किडनी बीन्स आपके किडनीज को स्ट्रांग करते हैं। पियर आप उसकी शेप देखें तो हार्ट से मिलती है, तो वो आपके हार्ट को स्ट्रांग करता है। ये सब जो आज हमने इन्वेंशन की है और पढ़ा है, माशाल्लाह स्टडी की है डॉक्टर और मेडिसिन में, आप देखिए इसका रूट कॉज पीछे जो आपको नेचर में मिल रहा है। और नबी सल्लम के दौर में आपको पता है कि लोग बीमार भी कोई नहीं होते थे, इन चीज़ों से इलाज कर लेते थे। बहुत ही खूबसूरत एक वाक्या भी आता है कि मदीना में कोई एक हकीम नहीं था, तो एक शख्स दूर से आया कि चलो मैं यहाँ अपनी दुकान चलाता हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं, मेरा काम बहुत चलेगा। ऐसे ही होता है ना, नई जगह पे जाके काम शुरू करते हैं तो वहां से ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। अब वो कुछ दिन बैठा रहा, कोई बंदा आया ही नहीं बीमार। उसने किसी को बुलाया, कहा कि तुम लोग बीमार नहीं होते? तो उसने कहा हम बीमार नहीं होते। क्यों? कहा कि हम, पहली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे अमल करते हैं, पेट को 3 हिस्सों में रखते हैं, एक थोड़ा खाते हैं थोड़ा पानी के लिए, बाकी एम्प्टी छोड़ देते हैं, और दूसरी बात है कि हम सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं। कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स उसने बताई। उसने कहा तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं, दुकान उठा के ले गया। आज सच्ची बात है, दुख के साथ कहती हूँ, कोई अल्लाह ना करे किसी का मजाक उड़ाना या किसी के बारे में बैड नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मुसलमान भाई बहन होगा जो बीमारियों से बचा हुआ है। घरों में डॉक्टर्स दवाइयाँ ना, मैं आपसे ही पूछ लूँ कि क्या आपके इस घर में कोई दवा है? तो आप कहेंगे श्योर ऑफ कोर्स, हर तरह के पेन किलर से लेके सीरप से लेके इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड, कुछ भी, सब कुछ होता है। सिंपल सी बात बताऊँ, जितनी अपनी डाइट को नेचुरल रखे, आपके सामने एक चॉकलेट कोई रखता है और एक खजूर रखता है, क्या पकड़ेंगे? खजूर। आप कहेंगे चॉकलेट भी तो अल्लाह ने पैदा किया। चॉकलेट भी अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन उसको बनाने में हमने बहुत कुछ डाल दिया ना। नेचुरल सिंपल रखे। आपके सामने कोई फ्रेश फ्रूट रखे या आपके सामने कोई कैंडीज रखे, क्या उठाएंगे? फ्रेश फ्रूट उठाइए। ड्राई फ्रूट्स आप देखिए, इवन ड्राई फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं लेकिन उनका फायदा बहुत है। इवन ऑयली होते हैं लेकिन उनका वो नुकसान नहीं जो हमारे ऑयली पके हुए खानों का होता है। तो अगर हम अपनी डाइट को बहुत नेचुरल रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून आएगा। पहले लोग ऐसे ही थे। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे घर में कोई दवाई नहीं है, तो आप कभी भी नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे क्योंकि ये ट्रेंड ही नहीं है, रुझान नहीं। हम बीमार होने पर नहीं खाते, होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। आई थिंक सो, मुझे ये इन्फेक्शन होने लगा, मैं खा लूँ। वो एक बच्चा था ना, तो वो कहता है पुप्पो यहाँ से खून निकलने वाला है, पट्टी लगा दो। बच्चों को शौक होता है ना बैंडेजेस का, किधर है, निकलने वाला है अभी, तो पहले लगा दो। तो आज हमने प्रिकॉशंस में बच्चों को माँ के पेट से इंजेक्शंस का और दवाइयों का आदि कर दिया। अब कहते हैं कि अमेरिका में, अब तो काफ़ी साल हो गए इस बात को, जब मैं वहाँ थी तो नया ट्रेंड क्या था जो हमारी यंग मुस्लिम सिस्टर्स में था, कि जो बेबी डिलीवरी है ना वो नेचुरल करवानी है। जो कभी आपके दौर में नानियाँ दादियाँ घर में दाई को बुला के वक्त पे करती थी। तो एक सिस्टर थी हमारी बहुत अच्छी, अरब है वो, शादी के 5-6 साल हो चुके थे तब तक उनके बच्चे नहीं थे। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई, और आपको पता कि यहाँ के कुछ लॉज भी होते हैं कि जी डॉक्टर को दिखाओ नाम लिखाओ, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने अपना किसी हॉस्पिटल में नाम नहीं लिखाया था। फिर वहाँ प्रोफेशनली भी अब ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो हर्बल्स के साथ आपका इलाज करते हैं। फिर उसका जब वक्त आया तो घर में उस औरत को उन्होंने बुला के बेबी डिलीवर कराया, और वो कहती पूरे वक्त में ना मैं हॉस्पिटल्स में गई हूँ, ना अपॉइंटमेंट्स, ना चेकअप्स, और एवरीथिंग इज ओके। आज तो पहले ही मसले पड़ जाते हैं, क्यों हर वक्त हम अपॉइंटमेंट्स में, इधर की अपॉइंटमेंट, इधर की, इधर की, इधर की, छोटे छोटे बच्चों के अपॉइंटमेंट्स हैं, लेट देम फ्री प्लीज। जितना घर में दवाइयाँ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स का तस्करा होगा, आप साइकोलॉजिकली खुद को सिक फील करेंगे। याद करें आखिरी दफा कब डॉक्टर पे गई थी, याद भी नहीं आना चाहिए, इतनी दूर हो। हमारी बॉडी में अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत सारी ताकत रखी है, ये खुद ही अपने एंटीबॉडीज को रिलीज करती है और हम ठीक हो जाते हैं। तो बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन कोई डॉक्टर्स हैं तो उनसे माजरत के साथ। तो बहरहाल जब हमने फ्री अब दवाइयाँ ली होती हैं तो फिर हम कहते हैं चलो फ्री चेकअप है करते हैं। बाद लोग कहते हैं आप वो यहाँ तो फ्री हो जाता है चेकअप जी, यहाँ तो इंश्योरेंस है। तो मैंने कहा टाइम तो फ्री नहीं है ना, 3 दिन 4-4 घंटे, और फिर वहाँ से आके सच बताएं, हॉस्पिटल से चक्कर भी लगाए ना, तो एकदम फीलिंग आनी है कि आई एम सिक, आई एम सिक है। तो बहरहाल नेचुरल रखिए, बच्चों को शुरू से इन चीज़ों पे ना डालें, इजी गोइंग रहें, आपकी ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा है। हमारे पास ना इतना वक्त है, ना हमारे पास इतना माल है कि हम इन चीज़ों में लगाएं। हमारा वक्त, हमारा माल, हमारी स्किल्स, हमारे गम सब किस में लगने चाहिए? अल्लाह के दीन में लगने चाहिए। फिर एक और है कि कभी खुदा ना खास्ता बच्चा ब्लीड कर जाता है, कट लग जाता है काम करते हुए, तो क्या करें? अब ये भी एक देखिए सुन्नत में मिलता है कि खून रोकने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाट की राख इस्तेमाल की। टाट पता है क्या होता है? जूट। जूट समझते हैं, ये नेचुरली ये शायद कुछ छाल से बनता है, बोरियां नहीं होती थी पाकिस्तान में। हदीस पढ़ के देखते हैं, हजरत सहल बिन साद फरमाते हैं कि ओहद के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह का जख्म धो रही थी, और अली बिन अबू तालिब ढाल से जख्म पर पानी डाल रहे थे। हजरत फातिमा ने जब देखा कि पानी डालने से खून ज्यादा निकल रहा है, तो टाट का टुकड़ा लेकर जलाया और इसे जख्म पर जमा दिया तो खून बंद हो गया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। आप टाट को जरा रिफाइन करें ना तो आज की वो बैंडेज बन जाती है। टाट भी तो कपड़े ही है ना, एंटीसेप्टिक हो जाएगा, जब उसको जला लेते हैं तो सब जर्म्स जल गए, तो उसको जख्म पर डालेंगे तो वो एक किस्म की क्लॉटिंग का भी जरिया बनेगा और ब्लड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब दिल के मर्ज की दुआएं। नबी सल्लम ने दिल के लिए अजवा तजवीज़ फरमाई। नीस अजवा खजूर मदीना मुनवरा में खजूर की एक ख़ास किस्म है, ये जहर और जादू का भी इलाज है। इसको देखें अब आप। तो हज़रत साद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स जिस रोज़ सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाए, इस रोज़ वो जहर और जादू के असर से महफूज रहेगा। ये बुखारी की रिवायत है। अब आप देखिए, तीन चीज़ें हैं। पहली बात है, क्या हार्ट डिजीज़ आज कॉमन है बच्चों को भी, इवन यंग्स को? चेस्ट इन्फेक्शन, पेन है, ये हो रहा है, पता चला ये हुआ वो हुआ, पता क्या। अजवा खजूर महंगी खजूर है, लेकिन आप देखिए कि हम इतने और भी तो गिफ्ट्स लेके आते हैं ना एक दूसरे के लिए। कभी हज और उमरे पे जाएं, बेस्ट गिफ्ट इज अजवा खजूर। थोड़ी ले लें, ज़्यादा ना लें, लेकिन सुबह उठ के 7 खजूरें, और उसके बाद अब देखिए कि जहर, खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा बाइट कर जाता है, कोई इस तरह का कोई मामला आता है, इससे इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा सेफ्टी होगी। और इसी तरह आप देखिए जादू, मैं तो नहीं मानती थी कि आज के दौर में भी जादू होता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि उन पे जादू है, होता भी होगा, हम इनकार नहीं कर सकते इस हकीकत का। तो ये कीजिए, फिर आमिलों पे जाना, ये पढ़ो, ये करो, नित नए तरीका इलाज, उसकी बजाय नेचुरल रखें। और एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हम जैसा अल्लाह ताला के साथ गुमान करेंगे ना, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे साथ वैसे ही मामला करेगा। अगर आप अल्लाह को ये कहते ना कि अल्लाह जी मुझे सीधे सीधे तरीके से शिफा दे दे, तो आप यकीन करें कि आप मट्टी भी पकड़ेंगे तो उसमें शिफा होगी। आप देखिए टेस्ट कितने मुश्किल हैं, अल्लाह ना किसी को डॉक्टर्स पे ले जाए, दवा तो छोड़ दीजिए, बाद सिस्टर्स को जब क्लोज है मतलब उनके साथ बात होती है तो वो अपने बाद ऐसे ऐसे टेस्टों का जिक्र करती हैं कि जो इंतहाई पेनफुल और इंतहाई तकलीफ वाले और पैसों वाले होते हैं। तो मैं सोचती हूँ ये तो एक टेस्ट है, सिर्फ इसने आपको ये बताना है कि आपको ये तकलीफ है कि नहीं, कोई इलाज नहीं है। तो अल्लाह जी आप खुद ही बता दें, आप खुद ही बता दें, राइट? तो जितना आप अल्लाह से अपना अच्छा ताल्लुक रखेंगे, अल्लाह ताला आपको इन मुश्किलात में डालने से बचा लेगा।